शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को हर मुरली में जो भी श्रीमत देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इसको कई नाम और भी दे सकते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग को और क्या क्या नाम दे सकते हैं। ये कल्याणकारी युग है, ये परिवर्तन युग है, ये परमात्मा के अवतरण का युग है। बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है इस संगम युग की, क्या क्या है ये संगम युग। तो बाबा कैसे आकर के परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एकदम घोर कलयुग आ गया है, अज्ञान अंधकार फैल गया है, अधर्म अति तक पहुंच गया है। तो जैसे घोर अंधियारा होता है तो फिर सूरज प्रकट होता है और फिर रोशनी आती है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं ज्ञान सूर्य। तो वो कैसे परिवर्तन लाता है, क्या परिवर्तन करता है, अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। और किसको कहेंगे ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान। ये किसी के पास भी ये प्रकाश नहीं है, आत्मा का प्रकाश है ही नहीं, न परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश है। तो ये दो मूल बातें बाबा आके बताते हैं, क्योंकि परिवर्तन का आधार है ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। और जब तक ये ज्ञान न दे तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो आत्मा का परमात्मा का ज्ञान मिलने से आत्मा में कैसे परिवर्तन आता है, बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र बन जाती है। तो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से आत्मा को फिर से पवित्र बनने की शक्ति मिलती है। तो पवित्रता मूल आधार है परिवर्तन के लिए, बिना पवित्रता के इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और उसके लिए बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, अपना ज्ञान परिचय देते हैं। तो आज की सारी मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 20/7/2026 है। मीठे बच्चे, परिवर्तन में कितनी बातें परिवर्तित हो जाती है वो भी एक बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। ये भी परिवर्तन होता है एकदम बेगर। किसमें बेगर? वो धन की बात नहीं है, लेकिन चरित्र में एकदम कंगाल। चरित्र अर्थात कोई भी गुण नहीं रहा, तो बेगर बन गए, जैसे भिखारी हो गए, कंगाल हो गए। शांति की भीख मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं, शक्ति की हर चीज में भगवान से मांगते ही रहते हैं, तो मांगता कौन है? भिखारी ना। तो बाबा कहते हैं बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। इतने कंगाल हो गए जो फिर भगवान से शक्ति मांगते हैं, अर्थात शक्ति लेके क्या बन जाएंगे? प्रिंस, स्वर्ग का मालिक है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। बिना पवित्रता के उस सतयुगी पवित्र दुनिया की राजाई नहीं मिल सकती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? परिवर्तन हो जाता है ना, तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो कौन सा पाठ है जिस पाठ को पढ़ने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और सचमुच देखा जाए ये आत्मा का पाठ सबसे सहज भी है और सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी देह अभिमान में आ जाते हैं ना। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ इतना पक्का हो तब तो पवित्र बने, तब तो परिवर्तन हो। तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। कितना परिवर्तन आ जाता है आत्मा का पाठ पढ़ने से। आत्म अभिमानी बनने से ही तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। तो बाप ही आकर के आत्मा का पाठ पक्का करा करके बच्चों को पावन बनाकर फिर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। गीत है, परमात्मा को पुकारते हैं, तो पुकार का कौन सा गीत है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह ओम शांति किसने कहा? फिर कौन से बच्चे? बच्चे जानते हैं तो कौन से बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। जैसे बाबा आते हैं, सबसे पहला शब्द मुख से निकलता है ओम शांति, हाँ, बाप दादा के मुख से। तो ये ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? पहले किसकी आत्मा ने कहा? किसकी आत्मा? शिव बाबा की आत्मा। परम पिता परमात्मा ने कहा ओम शांति। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, सबसे पहले भगवान के महावाक्य ओम शांति, ये मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वो सभी का बाप ऊंचे से ऊंचा है। अब गीत में सुना कि भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, भगवान को बुलाते हैं क्योंकि माया का परछाया दुनिया में पड़ गया है। वो सभी का बाप ऊंचे से ऊंचा है। अब गीत में सुना भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है। पतित पावन केवल एक की ही महिमा है। वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वो पिता भी है तो शिक्षक भी है। क्यों शिक्षक भी है? क्योंकि ज्ञान का सागर भी वही है, तो ज्ञान सागर आकर के ज्ञान देगा अर्थात शिक्षक बन पढ़ाएगा। और वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सर्वशक्तिवान भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, सब सब मनुष्य मात्र उस पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी है। कोई कितना भी कहे नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन ऐसा समय आ जाता है जो उसके मुख से वो पुकार निकलती ही है, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते ही हैं ओ गॉड फादर। अब उनका नाम भी चाहिए ना, उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ये मनुष्य की आत्मा बाप की महिमा गाती है। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? शिव बाबा भी तो आत्मा ही है ना, पर वो ऊंच से ऊंच आत्मा है। तो ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वो है परम, परम माना सबसे ऊंचा, परम। तो किस में परम? ज्ञान में परम, गुणों में परम, कर्तव्यों में परम, सब में परम। वो है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय कोई पतित नहीं था। कितना कॉन्ट्रास्ट, इस समय सब पतित और सतयुग में कोई पतित नहीं। उस देवी देवताओं का राज्य था, भारत पवित्र पावन था, तो कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं, सब पापात्माएं, वन टू ऑल, सब पाप आत्माएं, छोटे बड़े सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत अब पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, परमात्मा को अपना शरीर नहीं है तो उनको शरीर तो चाहिए ना। हाँ, क्यों शरीर जरूरी है? प्रेरणा से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आत्माओं की जो फ्रीक्वेंसी है इतनी लो हो गई है, इतनी खत्म हो गई है, तो परमात्मा इतना ऊंचा, उनको नीचे आना पड़ता है, मनुष्य जैसा अपना रोल बजाना पड़ता है, तभी तो आत्मा ही समझेगी। तो जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सभी शास्त्रों का सार सुनाते, विष्णु नहीं सुनाते। विष्णु को सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। और फिर बाबा कहते हैं शंकर की तो बात ही छोड़ो, ब्रह्मा और विष्णु को भी नहीं कहेंगे तो शंकर की तो बात ही छोड़ो, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा, जो पतित पावन है, ये महिमा उसी परम पिता परमात्मा की है। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है, कलयुगी दुनिया में आत्माओं की महिमा होती है, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है, मर्तबा किसको मिलता है? आत्मा को, शरीर तो केवल साधन है। आत्मा ही मर्तबा लेती है, शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं बाप जब आते हैं? हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुमको यही पाठ पढ़ाने आता हूँ। आत्मअभिमानी बनो ये पाठ पढ़ाने आता हूँ, ये पाठशाला है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। इस पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है? कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा आओ। अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, क्योंकि उस गीत में यदा यदाई धर्म से ग्लानिर्भवती भारत, तो परमात्मा आते हैं, धर्म ग्लानी के समय अधर्म का नाश करते हैं, तो उसके लिए बुलाते हैं। साकारी दुनिया में आओ, फिर रूप बदल कर आओ, क्योंकि जो उनका रूप है उस रूप में अगर आ जाए कौन पहचानेगा, तो रूप बदल कर आओ, मनुष्य तन में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, तुम भी रूप बदल कर आती हो ना। आत्मा बिंदु वो शरीर लेती है तो शरीर का रूप लेकर आते हैं, पुनर्जन्म लेती हो तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, गर्भ से तुमने 84 जन्म लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर क्या हुआ? फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर क्षत्रिय वर्ण में आए, फिर और नीचे उतरे वैश्य वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती गई। यहाँ चारों वर्णों में आकर के कलाएं कम होती गई। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। हम भी कहाँ जानते थे, जब तक बाप के बच्चे नहीं बने थे तब तक हम भी कुछ नहीं जानते थे। तो भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं। अगर कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। अब ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो का मतलब ये नहीं है कोई बाबा ने हमको ऐसे चक्र दिया और हम घुमाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं। जब पुकारते हैं बाप को परमात्मा को तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को नहीं पुकारते, वास्तव में पुकारते परमात्मा को है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? अगर पूछो ना भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है तो फिर वो हिंदू कह देंगे। पर बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है। हिंदू तो बाद में नाम पड़ा, पहले तो इसी ज्ञान से देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र किसने गीता गाई, राजयोग किसने सिखाया? परम पिता पतित पावन परमात्मा बाप ने ये राजयोग सिखाया हाँ, और गीता सुनाई। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। तो आत्मा भी निराकार साकार शरीर लेती है, परमात्मा भी निराकार, उनको भी परकाया प्रवेश करना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भाई सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे, वो तो करके उपाधि दी जाती है, उनको टाइटल देते हैं श्री भगवान, श्री नारायण, भगवती, श्री लक्ष्मी, ये उपाधि दी जाती है। पर कायदे अनुसार जब भगवान कहते हैं वो तो एक ही है, उनकी कोई भगवती नहीं होती है, वो तो निराकार है। तो कायदे अनुसार तो भगवान एक ही है, क्रिएटर इज वन, बाकी वो है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनता है, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान तो कभी महाराजा बनता ही नहीं है, वो तो इस दुनिया में राज्य करता ही नहीं है। भगवान कभी महाराजा नहीं बनता, वो तो बाप है ना सबका, वो तो बाप है सबका, जो आकर के भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाता है। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, इनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। अब क्या है, सब रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्यों वर्ष वर्ष जलाते हैं? एक बार जला लिया फिर पूरा नहीं हुआ क्या रावण पर? वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, ये कोई एक जन्म का दुश्मन नहीं है, एक साल का दुश्मन नहीं है, ये पुराना दुश्मन है, 63 जन्मों का दुश्मन है। क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते ही नहीं है, जलाते लेकिन ये पुराना दुश्मन है हमारा, इसको जानते ही नहीं है। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, भले बहुत कुछ कह देते परोक्ष रूप से तो है नहीं। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को ही कहेंगे। पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पारसनाथ पारसनाथनी थे। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो वहाँ क्या था, हाँ क्या नहीं था, जब भारत में स्वर्ग था तो वहाँ कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया भी जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, और किसकी महिमा अपरम अपार है, भारत की भी महिमा अपरम अपार है। पांच चीजें जिसकी महिमा अपरम अपार है, जो भगवान के साथ तैलक रखती है, भगवान की महिमा अपरम अपार है, फिर भारत की महिमा अपरम अपार है, फिर संगम युग की महिमा अपरम अपार है, फिर जो ज्ञान भगवान आकर देते उसकी महिमा अपरम अपार है, फिर जो रचना रचते हैं स्वर्ग उसकी महिमा अपरम अपार है, है ना। तो महिमा अपरम अपार है, भगवान के साथ इनकी भी महिमा अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। किस आधार पर महिमा अपरम अपार बन जाती है, पवित्रता के आधार पर। तो सारा मदार पवित्रता पर है, पुकारते भी ऐसे ही है, हे पतित पावन आओ, तो सब पतित है ना। पीस नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, क्योंकि प्यूरिटी नहीं है, तो प्यूरिटी नहीं तो पीस भी नहीं तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, पवित्रता नहीं तो शांति भी नहीं तो सुख भी नहीं। अभी तुमने समझा है कि हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इसको कहा ही जाता है पतित सब बन गए तो ये दुनिया क्या बन गई, इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है, मृत्यु लोक को आग लगनी है। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, इसी यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। तो ये है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, फिर असल नाम तो शिव है ना, तो इसलिए शिव ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, शिव के कितने नाम रख दिए हैं, बहुत नाम रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते। जहाँ भी जाएंगे भले नाम कितने भी अलग अलग है, लेकिन अंदर तो वो पिंडी तो एक ही है शिवलिंग। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब ये भक्ति पूरी होती है तो भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, फिर जैसे ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात भक्ति से वैराग्य अर्थात इस सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में ही तो भक्ति है, नई दुनिया में तो भक्ति होती नहीं है, तो इसीलिए पुरानी दुनिया से भी वैराग्य, इसलिए भक्ति से भी वैराग्य। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी है, तो बच्चे पूछते हैं अविनाश होनी है, सब पतित बन गए हैं, तो बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने, पतित बन गए तो पावन बनना है, तो पूछते हैं बाबा से कैसे बने पावन। कई नए आते हैं तो उनको अंदर अलाव नहीं किया जाता है, बाबा की मुरली में अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, और किसको पता ही नहीं है कि यहाँ हम किस लिए पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए। नया नया कोई आए तो उसको क्या पता मनुष्य से देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो समझ ही नहीं सके। और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही तो पावन बनेंगे ना, पतित बने हैं तो अभी पावन बनेंगे, हम ही पतित बने हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं, श्री कृष्ण में सब गुण हैं। राज्य तो लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, भले श्री कृष्ण में भी सब गुण होंगे लेकिन राज्य नहीं है उसके पास, राजकुमार जरूर है। तो राज्य तो लक्ष्मी नारायण का होगा, राज्य तो लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब इसमें उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। वो पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो नहीं सकता। श्री कृष्ण जो सतयुग का पावन प्रिंस था वो गीता पाठ सुनावे, ये हो नहीं सकता। पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए वो गीता पाठ सुनावे, ये हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। शास्त्र नहीं होते, भक्ति मार्ग के चित्र नहीं होते। हाँ, कोई ऐसे तीर्थ स्थान जैसे अभी कलयुग में है वो भी नहीं होते। वो भी एक लिस्ट बन सकती है क्या क्या नहीं होता है सतयुग में जो अभी कलयुग में है। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हो। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। भारतवासी 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं थी। 5000 वर्ष की तो बात है, लाखों करोड़ों वर्ष की बात नहीं है, 5000 वर्ष की बात है कि कोई पार्टीशन नहीं थी, भारत सारा विश्व ही था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुगी को पावन सतयुगी बनाने। किस लिए यह यज्ञ रचा है? पतित कलयुगी को पावन देवता सतयुगी बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। अब सतयुगी पावन देवताएं बन जाएंगे तो जरूर कलयुग की पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो भी सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। अब वो तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। शिव बाबा की भी सब औलाद है तो ब्रह्मा की भी औलाद है सब। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था। सतयुग की रचना करने मैं संगम पर आया था 5000 साल पहले, तुमको ये राजयोग सिखाया था। अब श्री कृष्ण तो राजयोग नहीं सिखाता है, मैं आया था 5000 साल पहले राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण तो पति दुनिया में आ ही नहीं सकता है, बहुत बड़ी बात है ये, श्री कृष्ण पति दुनिया में आ ही नहीं सकता है, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है मैं सदगति करूंगा, कोई मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। याद भी तो सभी एक को ही करते हैं, क्योंकि वो ही सदगति करने वाला है। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम बच्चे जानते हो? हाँ, हम जानते हैं ना कि परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। अब दुनिया में ये लोगों से पूछो कहाँ रहते हैं, तो मुन जाते हैं कहाँ रहते हैं, तो कितने जवाब देंगे, वो तो सबके दिल में है, वो तो रोम रोम में है, वो तो सब जगह है। हाँ, ऐसे ही कह देते। तो बाबा कहते नहीं, परम धाम में रहते हैं, वो है ब्रह्म महतत्व, वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। परम धाम में आत्माएं जो भी है सब पवित्र है, चाहे योग बल से पवित्र बनकर गई, चाहे सजा बल से पवित्र बनकर गई, तो वहाँ सब पवित्र आत्माएं हैं जैसे महात्माएं हैं। सब आत्माएं वहाँ महात्माएं हैं परम धाम में। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि शरीर साथ है तो शरीर तो पतित है ही है, तो महान आत्मा कैसे हुए? वास्तव में यह महान आत्मा एक भी नहीं है, आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है। ज्ञान और योग से, हाँ, कैसे बनना है सतो प्रधान? ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्मा ही जो पतित है उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, तो कैसे बनाते हैं पतित से पावन? बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। ये भगवान ही कह सकता है, और भगवान ये कहकर हमें पतित से पावन बनाता है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। पतित से पावन पूरा बनना है ना, 100%। तो जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें ही है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, हाँ ये भी किसको पता नहीं। अब हमको सारा पता चल गया है, सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। रावण कौन है ये भी किसको पता नहीं, फिर कब से रावण को जलाते हैं ये भी किसको पता नहीं, पुराना दुश्मन है तो कब से जलाते आ रहे ये भी किसको पता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। अब सतयुग में तो नहीं जलाएंगे ना, जब पूछते हैं ना किसी से ये रावण कब से जलाते आए हैं, तो कहते हैं कि परंपरा। बाबा कहते हैं सतयुग में तो नहीं जलाएंगे ना, अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन नहीं कर सकता है, ये तो बाप का ही काम है। राम राज्य स्थापन करना बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित मनुष्य राम राज्य नहीं स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं पतित मनुष्य तो सब विनाश हो जाएंगे, पतित दुनिया ही विनाश होनी है, तो पतित मनुष्य क्या राम राज्य स्थापन करेंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है, सतयुग में एक भी ऐसा नहीं कहेगा, सतयुग में एक भी ऐसा नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा, हे पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, ये कलयुग में ही कहते हैं। वो तो पावन दुनिया है ना, तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, एक तो स्वर्ग का मालिक कैसे बनाया ये कोई नहीं जानता, फिर उसके और आगे कि 84 जन्म उन्होंने लिए वो कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सबको निश्चय है ना, हम सब ने 84 जन्म लिए हैं, है क्या कोई जिसको निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है तो हाथ उठाओ, 84 जन्म नहीं लिए, नहीं सब ने लिए, सब सतयुग के आदि में आए। तो बाबा कहते हैं, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं, अभी तो नहीं कहेंगे ना शूद्र वंशी, अभी हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, कहां पैर थे शूद्र वंशी और कहां बाबा ने एकदम चोटी बना लिया ब्राह्मण वंशी। ये है ऊंच से ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, और क्या है हम शिव बाबा के, एक तो डायरेक्ट बच्चे भी हैं, आत्मा ही परमात्मा की संतान है। दूसरा बाबा कहते तुम कौन हो, तुम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां भी हो। ये भी नशा होता है ना, मैं पोतरा पोतरी हूँ शिव बाबा का, पोतरे पोतरियां हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, वर्षा मिलता है दादे से ग्रैंडफादर से, तो बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे भी वही, पावन बनो तो तुम मुक्ति धाम में आ जाएंगे, ये बातें कौन समझेंगे, ये बातें भी समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझाए, और तो समझेंगे भी नहीं। वो तो हजारों हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा है, हाँ वो तो अभी तो लाखों है, उस समय बाबा ने कहा था हजारों है 60s में, तब थोड़े सेंटर्स थे, अभी तो लाखों में है, तो वो तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो बोलो हजारों के अंदाज में है, और अभी क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, लाखों के अंदाज में है, लाखों के अंदाज में है, अभी उस समय हजारों के अंदाज में थे। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, किसका सैपलिंग लग रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग, कलम कलम लगता है ना, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म इस समय है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए हैं, जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो हिंदू कहलाते हैं, और कई हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे। अभी तो देखो कितने देशों में हम देखते हैं, हाँ वो सब हिंदू बनते जा रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू है, सब वो जन्म तो क्रिश्चियन धर्म में हुआ होगा, लेकिन हम हिंदू है ये कहते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा हाँ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे आ करके बाप से वर्षा लेंगे, ये भगवान वाच है, वो सब निकल आएंगे फिर फिर बाप से आकर वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाने। बाबा के बच्चे भी डबल विदेशी कैसे मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, अभी सब तैयार बैठे हैं, टिकट ले लिए मधुबन आने की टिकट, मधुबन जाना है, कितनी लगन है उन आत्माओं को। तो क्योंकि आजकल टिकटें भी बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है विदेश की टिकट, तो इसीलिए पहले से ही ले लेते हैं ताकि उस समय थोड़ी सस्ती मिले, उस समय तो और भी महंगी हो जाएगी। तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। तुम आए हो किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। कैसे खाद निकलेगी? आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है, नशा रहे हम ब्राह्मण कुलभूषण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है, ये भी नशा है, हम ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है क्योंकि हम शिव बाबा के पोतरे हैं, भगवान के हम पोतरे हैं, बच्चे तो है ही है पोतरे भी है, इसलिए डायरेक्ट अधिकारी है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है क्योंकि शिव बाबा के पोतरे हैं। वरदान, वरदान है अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, दुनिया में तो वायुमंडल अच्छा नहीं है ना, पर कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति, हमारी अगर वृत्ति शक्तिशाली है तो स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। भले कितना भी तमो प्रधान वायुमंडल हो पर हमारी शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। ऐसे नहीं कि वायुमंडल विकारी है तो हमारी भी वृत्ति विकारी बन जाए, हमारी वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं ना, तो जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। मास्टर पतित पावनी वन स्वयं को स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। कैसे मिटाओ कमजोरी पवित्रता का वायुमंडल? अब मास्टर पतित पावनी वन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। ऐसे नहीं कहो यहाँ तो बहुत पतित वायुमंडल है, पतित वायुमंडल है, गंदा गंदा पर ऐसे गंदा गंदा, ऐसे नहीं कहो। लेकिन आपको बदलना है। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है, मुख से निकालना भी नहीं है कि ये तो बहुत पतित तमो प्रधान वायुमंडल है। अगर गए भी वहां तो उसको पावन बनाना है, ये नहीं कि वो पतित है तो हमको ही पतित बनना है। तो कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। सबको बाप का परिचय देते जाओ तो प्रत्यक्षता होगी। ये अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए योग माना शांति की शक्ति। योग कौन सा, किसको कहेंगे योग? योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। किससे? शांति की शक्ति से। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको थोड़ी मुख का कोर्स कराएंगे प्रकृति को। तो मनुष्यों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं और एक ही संकल्प रहता है, कौन सा? बाप और मैं, बाबा और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मुरली क्लास के बाद सभी आबू निवासी भाई बहनें फल विभाग में पहुंचे। मुरली क्लास के बाद सभी आबू निवासी भाई बहनें फल विभाग में पहुंचे। अभी ये ईयरबड मिला है, पता नहीं किसका है, एक ही है, एक पता नहीं उसके पास ही होगा, एक उसका गिर गया होगा, पता ही नहीं चला होगा। और एक सूचना है खास करके मधुबन निवासियों के लिए, आज शाम 6 बजे मेडिटेशन हॉल में, पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में दादी प्रकाशमणि जी अंतर्राष्ट्रीय मैराथन रेस कार्यक्रम के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया है। आपको पता है दादी प्रकाशमणि जी का व्यक्ति दिवस 25 अगस्त है, तो अभी अगले महीने ही है, उसके लिए मैराथन रेस करते हैं और विदेश विदेश के लोग आते हैं इस मैराथन रेस में भाग लेने। तो अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कार्यक्रम के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व मधुबन निवासियों डिपार्टमेंट इंचार्ज और वॉलंटियर्स को विशेष